नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। राज्य सरकार ने बिहार कला पुरस्कारों की घोषणा की। पद्मश्री दुलारी देवी, बउआ देवी और लोक गायिका कल्पना पटवारी तथा भरत शर्मा समेत 52 कलाकार होंगे सम्मानित। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। भारत ने नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया। और बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आज। प्रदेश के 912 केंद्रों पर हो रहा है परीक्षा का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि इस दौरान श्री नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। उनका पार्टी कार्यकर्ताओं से भी संवाद का कार्यक्रम है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार ने 50,000 रूपये से अधिक के लेन देन पर निगरानी बढ़ा दी है। राज्य में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, पोस्ट ऑफिस समेत अन्य वित्तीय संस्थानों से 50,000 रूपये से अधिक की राशि निकालने वालों की जांच की जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि केंद्र और बिहार सरकार ने मिलकर प्रदेश में चौतरफा विकास के कार्य किए हैं। औरंगाबाद में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन सभा को संबोधित करते हुए श्री राय ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में बिहार का नाम देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ ही सीमांचल को कई सौगात देंगे। कटिहार जिले में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इससे सीमांचल और अंग प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। राज्य के 52 कलाकारों को कला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कला संस्कृति मंत्री मोतीलाल प्रसाद ने बताया कि 3 वित्तीय वर्ष से ये पुरस्कार नहीं दिए जा रहे थे, जिसे इस वर्ष देने की घोषणा की गई है। मंत्री ने कहा कि चित्रा प्रसाद, पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी और बउआ देवी, कल्पना पटवारी, रत्नेश प्रसाद और अशोक विश्वास को राष्ट्रीय पुरस्कार तथा अनिल बिहारी, सुमन कुमार, पद्मश्री निर्मला देवी और सुमन पासवान, भरत सिंह तथा भरत व्यास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार वितरण समारोह 24 सितंबर को आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकारों को 1-1 लाख रुपए, जबकि स्थापित कलाकारों को 51,000 और नए कलाकारों को 25,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पोड़ैल ने नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया है और अगले साल 5 मार्च को नए संसदीय चुनावों की घोषणा की है। इससे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने कल रात नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। इधर भारत ने नेपाल में श्रीमती सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे नेपाल में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने बर्खास्त किए गए विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों को सेवा में वापसी का मौका दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि संविदा पर नियुक्त विशेष सर्वेक्षण अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और लिपिक काम पर वापस लौटने के लिए विभाग में अपील अभ्यावेदन दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 54 अभ्यावेदन पर विचार करते हुए उन्हें सेवा में वापस ले लिया गया है। गौरतलब है कि कई बार चेतावनी देने के बाद भी हड़ताल समाप्त नहीं करने वाले 7,000 संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा का आयोजन 37 जिलों के 912 केंद्रों पर होगा। परीक्षा दोपहर 12 बजे शुरू होकर 2 बजे तक चलेगी। आयोग के अनुसार कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापक तैयारी की गई है। आयोग ने उम्मीदवारों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने को कहा गया है। पूर्वाह्न 11 बजे तक ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री का सपना 3 सितंबर को जीएसटी परिषद के नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की स्वीकृति से साकार हुआ है। इस क्रम में आज हम खाद्य और स्टेशनरी वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करने वाले सुधारों पर नजर डाल रहे हैं। एक रिपोर्ट।
नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने आवश्यक खाद्य पदार्थों और स्टेशनरी उत्पादों पर करों में कटौती करके नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने कर की दर को पहले के 12% और 18% के स्लैब से घटाकर 5% और 0 कर दिया है। पनीर, बिस्किट और चॉकलेट सहित कई अन्य खाद्य उत्पादों पर जीएसटी की दर 5% कर दी गई है। इस बीच पहले से पैक खाद्य पदार्थ जैसे दूध, ब्रेड, बिना ब्रांड वाले चावल, गेहूं और दालों को अब जीएसटी मुक्त स्लैब में रखा गया है। इसके अलावा इन के अंतर्गत आवश्यक स्टेशनरी वस्तुओं को भी पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, इरेजर और नोटबुक जैसी वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इन परिवर्तनकारी सुधारों से लोगों पर वित्तीय दबाव कम होगा। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई पर व्यक्ति से व्यापारी लेन देन की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रतिदिन कर दी है। ये बदलाव 15 सितंबर से लागू होगा। खरीदारी के लिए बड़े डिजिटल भुगतानों को आसान और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए यह बदलाव किए गए हैं। हालांकि व्यक्ति से व्यक्ति हस्तांतरण के लिए सीमा 1 लाख रुपए प्रतिदिन बनी हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज किशनगंज और अररिया जिले में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्णिया, सुपौल, जमुई और नवादा जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।
दिनांक 13 सितंबर 2025 को उत्तर मध्य एवं पूर्व भागों के अनेक स्थानों जबकि शेष भागों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। राज्य के किशनगंज और अररिया जिलों के 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के पूर्णिया, सुपौल, जमुई एवं नवादा जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के तैयबपुर में सबसे अधिक 68.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कृषि विभाग ने शारदीय खरीफ मौसम में उर्वरक की कालाबाजारी और अधिक मूल्य वसूली पर रोक लगाने के लिए अब तक 53 उर्वरक दुकानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय समीक्षा बैठक के बाद बताया कि 255 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। उन्होंने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को जिला और प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के आदेश दिए हैं। इधर खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पिछले 10 दिनों में गड़बड़ी करने वाले 141 जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। वहीं 91 डीलरों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एनआईए की टीम ने किशनगंज जिले के सदर थाना क्षेत्र में हलीम चौक इलाके से मोस्ट वांटेड अपराधी महबूब आलम नदवी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि महबूब मूल रूप से कटिहार जिले के रामपुर हसनगंज गांव का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि महबूब आलम नदवी प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का सदस्य है। उस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। मधुबनी जिले की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग के अपहरण मामले में आरोपी राजेश कुमार उर्फ पिंटू को 5 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 10,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पटना जिले की एक अदालत ने राइफल के साथ पकड़े गए युवक की 2.5 वर्ष कारावास और 10,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इधर जिले के एटीएस की विशेष अदालत ने जाली नोट की तस्करी के मामले में दो लोगों को 5-5 साल कारावास और 2,000 रूपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। औरंगाबाद जिले के नबीनगर में लखपति दीदी समेत अन्य योजनाओं के तहत पंजाब नेशनल बैंक की ओर से ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। पीएनबी के राज्य प्रमुख नाथुराम बंजारा ने बताया कि औरंगाबाद मंडल क्षेत्र में लगभग 400 करोड़ रुपए के ऋण वितरण को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है। रेलवे ने प्रदेश से गुजरने वाली 8 जोड़ी रेलगाड़ियों का विस्तार किया है। इसके अनुसार अब दानापुर जोगबनी इंटरसिटी एक्सप्रेस कैपिटल एक्सप्रेस और गरीब रथ ट्रेन का आरा रेलवे स्टेशन तक विस्तार किया गया है। वहीं अहमदाबाद से बरौनी के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का विस्तार सहरसा तक किया गया है। इसके साथ ही कुछ अन्य रेलगाड़ियों के मार्ग में भी विस्तार किया गया है। प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया एनटीपीसी जोनल आर्चरी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में बिहार झारखंड ओडिशा छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल और एसपीएसबी आरएसबी सीएसईबी के 300 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसमें बिहार के 36 पुरुष और 36 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता 14 सितंबर तक चलेगी। दरभंगा जिले के श्रेयांश झा अंडर 15 स्क्वैश रैंकिंग में एशिया में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई गणमान्य लोगों ने बधाई दी है। श्रेयांश ने इस वर्ष जुलाई में जर्मनी में आयोजित यूरोपियन ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता के अंडर 15 वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन पर लिखा है, कार्की नेपाल की अंतरिम पीएम, प्रतिनिधि सभा भंग, 21 मार्च 2026 को होंगे आम चुनाव। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की स्क्रूटनी होगी, कट सकता है भाजपा के 15 विधायकों का टिकट। दैनिक जागरण लिखता है, हर गली मोहल्ले में जन औषधि केंद्र, दूरी का मानक खत्म। प्रभात खबर का शीर्षक है, बिहार का विकास दर 13.9%, राष्ट्रीय औसत 9.8% से ज्यादा। राष्ट्रीय सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, पटाखों पर प्रतिबंध दिल्ली एनसीआर में ही क्यों। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार कांग्रेस के एआई जनरेटेड वीडियो पर बवाल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। राज्य सरकार ने बिहार कला पुरस्कारों की घोषणा की। पद्मश्री दुलारी देवी, बउआ देवी और लोक गायिका कल्पना पटवारी तथा भरत शर्मा समेत 52 कलाकार होंगे सम्मानित। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। भारत ने नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया। और बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आज। प्रदेश के 912 केंद्रों पर हो रहा है परीक्षा का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।